आप हैं SBS हिंदी के साथ।
अस्सी और नब्बे के दशक में जो साइंस फिक्शन फिल्में बन रही थीं, उनमें जिस दुनिया की कल्पना की जाती थी अक्सर वो 2020 के बाद की दुनिया होती थी। अब 2020 आ गया है, तो क्या वैसी दुनिया बन पा रही है जैसी 30 साल 40 साल पहले इंसान ने कल्पना की थी? हिंदी के लेखक संजय वर्मा ने एक किताब लिखी है जिसमें वो उन्हीं कल्पनाओं को भविष्य के आधार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा है, अध्ययन करके पता लगाना चाहा है कि दुनिया का भविष्य कैसा होगा, और संजय वर्मा आज हमारे साथ हैं अपनी उस किताब और उन कल्पनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। संजय जी, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर, बहुत बहुत नमस्ते। ये बताइए, किताब के बारे में बताइए कि किताब किस तरह की दुनिया की कल्पना करती है?
हाँ, किताब चुनौतियों की ज्यादा कल्पना करती है कि क्या चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। पहली चीज चुनौती ये है कि उससे हमारी जिंदगी, इंसान की जिंदगी कितनी आसान होगी। दो ही पहलू हैं, कितनी आसान होगी और कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। आसान कहें तो, और ऐसा आसान कहने में यह है जैसे कि नए शहर पूरी दुनिया में बसाए जा रहे हैं, भारत में भी स्मार्ट सिटी और एक गिफ्ट नाम का एक शहर अहमदाबाद के पास गुजरात में बस रहा है, तो कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस वो शहर होगा, कैसे सुविधाएं लोगों को वहां मिलेंगी। अब वो जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका नहीं, रूस, चीन, जापान, भारत, इवन पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन छोड़ेंगे, वो कैसे होगा। पूरी दुनिया का फोकस स्पेस की तरफ भी लगा हुआ है। स्पेस की तरफ बढ़ेंगे तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम चांद पर पहुंच जाएंगे, है ना, उसका मतलब ये है कि हम उसके जरिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके जरिए जो हम तकनीकी विकास हासिल करेंगे, वो परकुलेट होके, वो छन के, वो नीचे की तरफ आम जनता की सहूलियतों में कैसे बदल जाएगा। एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब स्पेस स्टेशन भेजने की बात हो रही थी, ISS को भेजने की बात हो रही थी अंतरिक्ष यात्रियों को, तो वो वहां रहेंगे तो कैसे खाना गर्म करेंगे, तो उसके लिए माइक्रोवेव, उसका आविष्कार हुआ, और माइक्रोवेव वहां से जो आविष्कार हुआ वो धीरे धीरे लोगों के घरों में पहुंचने लगा। हालांकि वहां के लिए जो बना था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन टेक्नोलॉजी वही है। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इस समय है, अभी क्या है, PC है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, MP3 है, DVD है, तो ढेरों डिवाइस हैं। अब उसमें सवाल पैदा होता है कि उसमें अब क्या बदलेगा, कई सारी चीजें। एक तो बदलाव ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी,
यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ मैं दी। इस बदलाव से पहले एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी किताब में अब तक क्या हुआ है दुनिया में, इंसान के साथ क्या हुआ है, इसकी भी बात करते हैं आप अपनी किताब में।
हाँ।
तो मैं ये जानना चाह रहा, ये सोच रहा था कि हमारे जीवन काल ऐसी कौन कौन सी घटनाएं आपको लगता है हुई हैं जो हमारे भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करने वाली
है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है उसका, हमारी ही पीढ़ी, आपकी और हमारी पीढ़ी में हमने अभी तक उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखा था, लेकिन आपने देखा होगा जो स्मार्टफोन आया उसने हमारे अंगूठे को, जो मतलब जो हम लगता था कि किसी काम नहीं है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसका होने लगा, उंगलियों का, है ना। इसी तरह से हमारे जो दिमाग की फंक्शनिंग है, अभी तक का जो तकनीकी विकास था, जो पूरा डेवलपमेंट उसके अलावा भी था, हमारा दिमाग सिर्फ उन सूचनाओं को ग्रहण कर रहा था और उसको देख रहा था, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है वो हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पर भी असर डाल रही है, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर असर डाल रही है। भारत में भी और पूरी दुनिया में इस समय नींद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ रहा है, तो उसके खिलाफ, उसके साथ हम कैसे एडजस्टमेंट बिठाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, है ना। इससे पहले ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था, अंगूठे का इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं हो रहा था पहले, अब इस्तेमाल होने लगा, हमारा जो नींद का साइकिल है वो बदल गया है, तो अब सोचा जा रहा है कि कैसे वो किया जाएगा। एक चीज आपने पूछी थी, उसमें सवाल मुझे याद आ रहा है कि दुनिया यहाँ से बेहतर होगी या बदतर होगी। दोनों दोनों चीजें हैं असल में। बेहतर होगी अगर हम देखें तो एक भारतीय दर्शन कहता है जीवेत चर्दा शतम, तब 100 साल इंसान जिए, है ना, बेहतरी की तरफ बढ़े
जी।
तो कैसे बेहतर होगी, तो भविष्य में ये देखता हूँ कि कई कई देशों में जो हमारी जिंदगी है, जो एजिंग की प्रोसेस है, उसको घटाने की कोशिश की जाए एजिंग की प्रोसेस और इससे उम्र बढ़े। तो साइंस की माने तो ये कहता है कि पूरी तरह पॉसिबल नहीं कि हम अमर हो जाए, लेकिन यहाँ पर साइंस एक सपना देख रहा है। वो कह रहा है कि हम अमर भले ही ना बना दें, लेकिन कोशिकाओं के डिके या उनके क्षय की जो उम्र है वो बढ़ा दी जाए। ये कैसे होगा? ये मेडिकल साइंस एक तरफ काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो बदला जाए, दवाएं जो है उस तरह की लाई जाए, ऑपरेशन इस तरह से कर दिए जाए। वो कह रहे हैं कि अगर हम 100 साल की उम्र अभी एक औसत सोचते हैं तो आगे बढ़कर कुछ सालों में हम 120 या 140 साल की उम्र की कल्पना करने लगे। ये एक बहुत क्लियर उनका उद्देश्य है, एजिंग की कंट्रोल की दवाएं और तीन तरह के उपाय उसको सोचे जा रहे हैं, जैसे कि दवाएं बना दे या जीन करेक्शन कर दे। जीन करेक्शन की बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है इस समय। दूसरा ये है कि जो स्वाभाविक प्रक्रिया है एजिंग की वो रोक दी जाए। तीसरा ये है कि मशीनों और कंप्यूटरों से हम इंसान के डिजिटल रूप को हमेशा के लिए संरक्षित कर लें। हम इंसान को अमर नहीं बना सकते, लेकिन ये कि बहुत बड़ी चीज हो रही है कि हम उसके डिजिटल अवतार को, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आपका रूटीन है, आप आपके जाने के बाद वो यथावत रहेगा डिजिटली, है ना।
अच्छा, आपकी जो अब तक की पूरी बातचीत है उसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि साइंस का, तकनीक का बहुत ज्यादा असर रहेगा हमारे भविष्य पर। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारा वर्तमान है खासतौर पर, उसमें धर्म और सामाजिकता के जो नियम हैं वो इतने ज्यादा प्रभावी हैं, तो उसको आपने देखा है कि भविष्य में उसके बारे में क्या होगा, वो धर्म कैसे कैसा रूप लेगा?
धर्म ये जो है ना, ईश्वर की जो खोज है और धर्म की जो खोज है वो विज्ञान के दायरे में भी हो रही है। वो कहता है कि हमारे लिए सबसे कठिन जो चैलेंज है वो पारलौकिक कही जाने वाली चीजें वो सारी हो सकती हैं जिनको हम अपनी आंख से स्थूल रूप में नहीं देखते हैं। तो वो कहता है कि आमतौर पे तो विज्ञान इस मामले में खामोश रहता है, कहता है कि इनके शायद आध्यात्मिक जवाब ही सटीक होंगे, लेकिन पिछले कुछ अर्से से ऐसा हुआ है कि साइंटिस्ट भी इन सवालों की तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने भी एक किताब लिखी थी, द ग्रैंड डिजाइन। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की रचना जो है ना, आप कहते हैं कि ईश्वर ने की है, लेकिन साइंस, हम, मैं एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखता हूँ तो कहता हूँ कि वो खुद ब खुद हुई है, अपने आप हुई है। न्यूटन इसके खिलाफ थे, वो ये चुनौती, मतलब खुद ब खुद जो मतलब ईश्वर ने कही है उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम ये नहीं मानते कि ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता होगा। वो कहता है कि अपने आप कोई ऐसी जटिल रचना नहीं पैदा हो सकती, उसके पीछे कोई साइंस का फॉर्मूला हो सकता है। मेरे ख्याल से ये करीब 13-14 साल पहले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के एक डॉक्टर निक बॉस्ट्रॉम थे, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा संसार है वो एक सिमुलेटेड यानी कि कंप्यूटर पर रचा हुआ संसार हो सकता है, और उसका क्वेश्चन चलाने वाला भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है, ठीक वैसे जैसे वीडियो गेम देखते हैं। वीडियो गेम में कोई एक मतलब हम दुश्मन है, कल्पना कर रहे हैं और उसको कोई मार रहा है। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, हॉलीवुड की फिल्म थी मैट्रिक्स, उसमें ऐसी ही दुनिया की कल्पना की गई थी।
तो आप अपनी किताब, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ संजय जी, कि आप अपनी किताब में किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये दुनिया बेहतर जगह होगी या बदतर जगह होगी?
मैं निष्कर्ष के रूप में कहता हूं कि बेहतर होगी अगर वो अपने चुनौतियों से पार कर लेता है, पार पा जाता है। ये जो इस समय जैसे ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडिश पर्यावरणविद है, लड़की है, वो कहती है कि आपने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है, तो वो गलत नहीं कहती है। वो कहती है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। जिस दिन हम ये चैलेंज समझ लेंगे उस दिन हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। चैलेंज क्या क्या है? इंसान बेदखल हो रहा है कई सारी चीजों पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद आपने क्रिएट किया है और खुद आपके लिए भी चैलेंज बन रहा है। कई कई देशों में जो मतलब भारत और चीन जैसे जो देश हैं जहां आबादी ज्यादा है, मशीनों पर जब काम चला जाएगा तो ये चैलेंज ये पैदा हो जाता है कि तब हमारे रोजगार का क्या होगा, और जब वैसी बेरोजगारी आती है वैसे ही तमाम सारी समस्याएं और पैदा होने लगती है। तो साइंस को इनके बीच का रास्ता निकालना है।
बहुत सुंदर संजय वर्मा, बहुत इंसाइटफुल है ये और सोचने को बोलती है आपकी, ये जो जानकारी आपने दी है ये कहती है कि सोचिए और फिर मुस्कुराइए कि दुनिया कैसी हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस रिसर्च के लिए, इस मेहनत के लिए और इस बातचीत के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।